हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अक्षत अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसने हारकर काली शक्तियों के महागुरु से तारा को ढूंढने के लिए कहने का डिसीजन ले लिया था, और इसके लिए उसने एक बड़ा ही कड़ा तप करना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानता था, अगर उसके अपने तप में वो काली शक्तियों के महागुरु को प्रसन्न कर पाया तो काली शक्तियों का महागुरु उसे जरूर तारा का पता देगा। लेकिन उसे इस बात का डर तो कोई एहसास नहीं था कि तारा इस वक्त जिस जगह पर थी उसका पता लगाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। कोई भी इस बात के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा कि इस वक्त तारा कहाँ मौजूद थी, क्योंकि परी लोग चारों ओर से अलौकिक शक्ति निवास किया करती थी, जिससे अक्षत अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसने हारकर काली शक्तियों के महागुरु से तारा को ढूंढने के लिए कहने का डिसीजन ले लिया था, और इसके लिए उसने एक बड़ा ही कड़ा तप करना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानता था, अगर उसके अपने तप में वो काली शक्तियों के महागुरु को प्रसन्न कर पाया तो काली शक्तियों का महागुरु उसे जरूर तारा का पता देगा। लेकिन उसे इस बात का डर तो कोई एहसास नहीं था कि तारा इस वक्त जिस जगह पर थी उसका पता लगाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। कोई भी इस बात के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा कि इस वक्त तारा कहाँ मौजूद थी, क्योंकि परी लोग चारों ओर से अलौकिक शक्ति निवास किया करती थी, जिसकी वजह से परी लोग किसी के भी नज़रों में नहीं आया करता था। लेकिन जो परी लोक में राक्षस मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था उसे राक्षस की शक्तियां सबसे ज्यादा थीं, जिसकी वजह से वो आसानी से परी लोक में चला गया था। लेकिन जिन्नातों का वंशज या काली शक्तियों का महागुरु कोई भी परी लोक में नहीं पहुंच सकता था, और ना ही अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा तारा परी को ढूंढ सकता था। वेल, अक्षत के तप में बैठने के बाद अमित ने अपना एक दानव तैयार कर दिया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ सही वक्त का इंतजार था, क्योंकि जिस पल अमन सबसे ज्यादा कमजोर होगा उसी पल वो उस दानव को उसके अंदर प्रवेश करा सकता था। तो बस सिर्फ और सिर्फ अमित को उस पल का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर जिन महाराज अमन उस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर बगीचे में ले गया था। बगीचे में जाकर अमन ने उस लड़की से कहा था, तुम कौन से झूले पर झूला करती थी, जाओ जाकर उस झूले पर बैठ जाओ। जैसे ही उस लड़की ने ये सुना वो हैरान हो गई और वो कहने लगी थी कि आप क्या कह रहे हैं, मैं भला उसे झूले पर अब झूलकर क्या करूंगी। शायद आपको नहीं पता, अगर मैंने यहाँ झूलना शुरू किया तो जितने भी लोग आपको इस गार्डन में बगीचे में दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी भाग जाएंगे, क्योंकि सभी को मुझ में से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। जैसे श्रेया ने ये सब कहा तो अमन को काफी ज्यादा बुरा सा लगा था और उसे अब काफी गुस्सा भी आया था अपने उस जिन पर जिसने उस लड़की की ये हालत की थी। वेल, जल्दी ही अमन के एक बार फिर कहने पर वो लड़की जाकर उस झूले पर बैठ गई थी और अमन उसे झूला झुलाने लगा था। तभी अचानक अमन ने झूला झुलाते हुए झूले को बिल्कुल रोक दिया था और थोड़ा सा तेज आवाज में बोला था, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, अभी और इसी वक्त सामने आ जाओ। जैसे ही अमन ने ये कहा वो लड़की हैरानी से अमन की ओर देखने लगी थी, जबकि उस लड़की के पार्क में आने के बाद जितने भी लोग वहां थे, बच्चे बड़े थे, वो सभी के सभी वहां से देखकर जा चुके थे। क्योंकि ये श्रेया काफी ज्यादा बदसूरत थी और उसमें से बदबू आती है, ये बात वहां का बच्चा बच्चा जानता था। पूरे इलाके में उसे लड़की को कोई भी देखना तक पसंद नहीं करता था, सबको ये लगता था कि ये लड़की मनहूस है। सभी लोगों में ये बात फैली हुई थी कि अगर इस लड़की की शक्ल देख लें तो सबके बने बनाए बिगड़े काम तक बिगड़ जाते थे, तो इसीलिए कोई भी उस लड़की को देखना तक पसंद नहीं करता था। इसीलिए पूरा का पूरा पार्क खाली हो चुका था, वो लड़की आराम से झूले पर बैठी हुई थी और साथ ही साथ वो छोटी सी बच्ची भी इसी बात को लेकर चौंक रही थी कि सभी को उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन अमन को उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी। और जैसे ही अमन ने उस पेड़ की ओर देखकर कहा था, मेरे सामने आ जाओ, ये कहा कि तुम मेरे सामने आ जाओ, छुपने से कोई फायदा नहीं है, तब उस लड़की ने हैरानी से अमन की ओर देखते हुए कहा था, यहां पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अमन उसकी ओर देखते हुए बोला था, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम आराम से झूला झूलते रहो। अब क्योंकि जिन महाराज अमन का हुक्म था तो जिस झूले पर वो लड़की झूल रही थी वो एक पेड़ पर डला हुआ था, और उस पेड़ पर से जल्दी ही एक रंग बिरंगी सी रोशनी होते हुए एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की जिन महाराजा अमन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका नाम हुस्ना था। हुस्ना को वहां देखकर अमन गुस्से से उसकी ओर घूरने लगा था और अचानक हुस्ना अमन की आंखों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसने अपने घुटनों के बल बैठकर अमन के पैरों को पकड़ लिया था और कहने लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए जिन महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ गलती से ये सब कुछ कर बैठी। जैसे ही अमन ने हुस्ना ने इस तरह की बातें की, अमन ने उसे कहा था, ये तुमने गलती नहीं गुनाह किया है, किसी की जिंदगी इतनी बुरी तरह से तुमने बर्बाद की है, तुम्हें इसके लिए मैं इतनी कड़ी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। जैसे ही अमन ने हुस्ना से ये कहा, हुस्ना ने बुरी तरह से खून के आंसू रोने लगी थी और कहने लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए जिन महाराज, मैं इस लड़की से माफी मांग लूंगी, इसे पहले के जैसा खूबसूरत कर दूंगी, इतना ही नहीं इसकी उम्र भी इसे लौटा दूंगी, पर मुझे माफ कर दीजिए। अमन तो ऑलरेडी सारा सच उस छोटी बच्ची की आंखों से जान चुका था, लेकिन वो एक बार फिर हुस्ना के मुंह से सुनना चाहता था कि आखिरकार उसने ने कब कब कैसे क्या किया था। तो इसीलिए अब अमन ने आगे बढ़कर हुस्ना को सीधा खड़ा कर दिया था और उसकी एक आंख में देखना शुरू कर दिया था। इस बीच झूल पर बैठी हुई वो लड़की हैरानी से सिर्फ और सिर्फ अमन को देख रही थी, क्योंकि उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अमन ही उसे दिखाई दे रहा था। वेल, जल्दी ही अमन ने उस अपनी उस जिन की आंखों में देखना शुरू कर दिया था। वो जिन कमाल की खूबसूरत थी और उस पेड़ पर ही रहा करती थी, और जब छोटी सी वो बच्ची उसे वहां खेलने के लिए आया करती थी, वो उसे बड़े ही ध्यान से देखा करती थी, क्योंकि वो बड़े ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, एकदम दूध जैसा उसका रंग, इतना ही नहीं उसके लंबे लंबे बाल, ये देखकर हुस्ना काफी ज्यादा जलभुन जाया करती थी कि कोई इंसान होकर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जबकि हुस्ना भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो उस इंसान को देखकर जलने लगी थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, हुस्ना की जलन और भी ज्यादा बढ़ती गई। 13 साल की लड़की बेहद खूबसूरत लगा करती थी। तब हुस्ना ने सोचा कि अगर 13 साल की ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तो जब ये जवान होगी, 20-21 साल की होगी, तब इसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तब अब उस जिन के जलने की हद हो गई थी, क्योंकि हर वक्त जब उसने ये देखा कि सब लोग उसकी खूबसूरती के कारण उसके आसपास रहते हैं। फिर एक दिन जब वो लड़की श्रेया हर रोज की तरह शाम को 5 बजे के बाद झूला झूलने के लिए आई, हुस्ना ने उसी दिन उस पर आक्रमण कर दिया था और उस पेड़ के झूले के द्वारा ही उसने एक छोटा सा ऐसा कीड़ा झूले के द्वारा श्रेया के हाथों तक पहुंचा दिया था, जिस कीड़े ने उस लड़की को काट लिया था और देखते देखते उसके शरीर पर अजीब से निशान उभर आए थे, और कुछ ही दिनों में अचानक से उसकी उम्र वहीं की वहीं दिखने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गई थी और उसमें से बड़ी ही बुरी बदबू आने लगी थी। ये सब कुछ हुस्ना ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती से जलकर किया था, जिसकी वजह से कितने ही सालों तक श्रेया ने इतनी बुरी जिंदगी गुजरी थी, सिर्फ और सिर्फ एक औरत जिनकी बेमतलब की जलन की वजह से।
वेल, अमन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अमन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक सफ़ेद जिन्नात इस तरह से इंसानों से जलकर एक खूबसूरत बच्चे की ज़िंदगी के इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर देगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जलन के लिए। क्योंकि हुस्ना तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और अपनी खूबसूरती की तारीफ पाने के लिए हुस्ना उस पार्क में कभी कभी एक छोटी बच्ची की शक्ल लेकर चली जाया करती थी और लोगों की तारीफें बटोरा करती थी। लेकिन जब से श्रेया ने उस पार्क में आना शुरू कर दिया था, तब से धीरे धीरे देखते ही देखते जहां लोग बच्चे के रूप में हुस्ना की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, वो लोग अब श्रेया की तारीफ करने लगे थे। तो ये देखकर हुस्ना बहुत ही ज्यादा जलभुनकर राख हो चुकी थी, इसीलिए उसने श्रेया की खूबसूरती को ही अपना निशाना बनाया था और अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए बदसूरती में बदल दिया था। और इतनी ज्यादा बुरी बदबू उसके शरीर में भर दी थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर उसके जिस्म की बदबू को सूंघ लेता तो कितने ही दिनों तक वो उल्टी करता रहता था। तो तब से सब लोग शहर से बुरी तरह से श्रेया से घिन करने लगे थे, इनफैक्ट उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे थे। कोई भी उसे अपने आसपास देखना तक पसंद नहीं किया करता था। इतना ही नहीं, उसकी सगे माँ बाप भी श्रेया के जिस्म से आती हुई बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तभी अचानक गुस्से से जिन महाराज अमन ने उस जिन की ओर देखते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था, और देखते देखते उसने हुस्ना पर एक फूंक मारी थी और फूंक मारते ही जितनी भी झूले पर बैठी हुई लड़की यानी श्रेया के ऊपर निशान थे, बदबू थी, वो सब के सब हुस्ना को मिल चुकी थी और उस लड़की श्रेया की पहले जैसी खूबसूरती उसे वापस मिल चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी उम्र भी उसे वापस मिल चुकी थी। अब श्रेया 13 साल की जगह एक 21 साल की बड़ी ही खूबसूरत युवती बनकर खड़ी हुई थी। जैसे ही श्रेया ने अपने आप में बदलाव महसूस किए और उसने ये देखा कि उसके हाथ बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ था और जल्दी से उसने गोल गोल घूमकर अपने हाथों को, पैरों को, गले को छूकर हर जगह देखना शुरू कर दिया था।